शमूएल अध्याय दो। हन्ना की प्रार्थना आत्मिकता की गहराई को व्यक्त करती है। अध्याय दो पद एक में, और हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। ऐसा लगता है कि मरियम हन्ना की प्रार्थना को जानती थी, क्योंकि जब वो अपनी रिश्ते की बहन एलीशिबा के पास गई थी, वो गर्भवती थी और उसका स्तुति गान हन्ना के समान ही था। मरियम ने कहा, लूका पहला अध्याय 46 पद में, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। आप इसे लूका अध्याय 1:46 से आगे पढ़ सकते हैं। मरियम की यह स्तुति गान परमेश्वर की महिमा का गाना कहलाता है, जो हन्ना के स्तुति गान सा है। हन्ना ने प्रार्थना करके कहा था, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। अध्याय दो पद एक से लेकर पद तीन तक, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। फूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। सामर्थी शब्द, परमेश्वर कामों का तौलने वाला है। केवल सही या उचित काम करना बहुत नहीं है। आप सही काम तो कर सकते हैं, परंतु यदि वो आपके मन से ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके कामों को तौलता है, अर्थात आपके कामों के पीछे आपकी क्या प्रेरणा है। यीशु ने कहा, अपने आप पर ध्यान दो कि तुम इंसान के सामने धर्म के काम मत करो कि इंसान देखे। मैं तुमसे कहता हूं, उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। बाइबल कहती है कि एक दिन हमारे मन के विचारों का न्याय होगा। आपने जो भी काम किया है, परमेश्वर जानता है कि आपने क्यों किया। अब ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन वे केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहां तक परमेश्वर का संबंध है, उनकी प्रार्थनाएं गिनी नहीं जाती। उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दिखाकर दान देते हैं ताकि उनका नाम लोगों के सामने आए। मैं ये नहीं कहता, परंतु ऐसा होता है। आराधनालय में दान दी हुई वस्तु पर उनके नाम लिखे होते हैं। वे यही चाहते हैं कि उनके नाम आए। जब आप स्वर्ग में जाएंगे और परमेश्वर के सामने होंगे, तब परमेश्वर जीवन की पुस्तक खोलकर देखेगा और आप कहेंगे, प्रभु एक मिनट रुकना, जरा तू कुछ भूल रहा है। ध्यान दे, मेरा नाम रंगीन शीशे की खिड़की पर था। उस रंगीन शीशे की खिड़की के लिए हमने बहुत पैसा दिया था। परमेश्वर वो यहां आपके रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है। वो कहेंगे, नहीं, वो यहां लेखे में नहीं है। क्यों नहीं प्रभु, मुझे वो बहुत महंगी पड़ी थी। वो कहेगा, तुमने अपना प्रतिफल पा लिया। हर कोई जो उस खिड़की के पास से गुजरा, उसने तुम्हारा नाम देखा। वे कहते थे, ओह क्या ही अच्छी बात है कि उसने चर्च को ये रंगीन शीशों की खिड़की दी। कुछ लोग मनुष्यों को दिखाने के लिए दान देते हैं। उनका उद्देश्य गलत है। परमेश्वर कामों को तौलता है। ये मैंने क्यों किया, यह मैंने क्या किया से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी मनोकामना आपके कार्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अतः ये मानना कि हमारा सब काम उसके द्वारा तोले जाते हैं। अध्याय 2:4 से लेकर 8 तक में शूर वीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का फेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी। जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। हन्ना के दुखी मन की आवाज। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। यहोवा निर्धन करता और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वो कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। हन्ना की इस व्याख्या को लेकर ये कहना कि बाइबल इस प्राचीन सिद्धांत का पक्ष करती है कि पृथ्वी खंभों पर टिकी है, बेवकूफी की बात है, क्योंकि उसने अपने व्याख्यान में कल्पना का प्रयोग किया है और पृथ्वी के खंभे और पृथ्वी की नींव का उन पर रखा जाना कहां है, ये सिर्फ कल्पना करके बोलना है और ये किसी तरह का आत्मिक ज्ञान या प्रगटीकरण नहीं है। अध्याय 2:9 में वो अपने भक्तों के पाव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। यहां मैं सोचता हूं कि फिर से एक महत्वपूर्ण वचन है, वो अपने भक्तों के पैरों को संभाले रहेगा। भजन संहिता में भक्तों के पैरों को संभालने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। भजन संहिता 71 में मेरे पांव लगभग फिसल गए थे। फिसलने वाले स्थान में चलना, वो अपने भक्तों के पैरों को संभाले रहेगा, असल में मुझे गिरने से बचाना, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। कैसा बहुमूल्य सत्य है, मनुष्य के अपने बल के द्वारा आप कभी प्रबल नहीं होंगे। मैं जब अपनी कमजोरी को पहचानता हूं तब मैं बलवान होता हूं। मैं जब सोचता हूं मैं बलवान हूं तब मैं सबसे कमजोर होता हूं। जब मैं सोचता हूं मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, परमेश्वर मुझे आपसे कोई सहायता नहीं चाहिए, मैं अपने आप करने में सामर्थ हूं, आपको प्रभु मेरे हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने आप करने दीजिए, यहां कोई समस्या नहीं है। यही वो समय है जब मैं अपनी सबसे खराब स्थिति में होता हूं, जब मैं खड़ा होता हूं और कहता हूं, परमेश्वर मैं नहीं समझता कि मैं कर सकता हूं, प्रभु मैं जानता हूं ये मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तब होता है जब मैं अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होता हूं, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल नहीं होगा। अपनी सामर्थ्य या बल के द्वारा आप कभी भी असली जीत को नहीं जान पाएंगे। हम तभी जान पाएंगे कि हम सच में मजबूत हैं जब हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करना और आश्रित होना सीखेंगे। अब हम एली के पुत्रों के बारे में देखेंगे। वे वास्तव में धूर्त थे। एली याजक था और उसके बेटे लालची थे। वे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला याजक थे, परंतु वे खराब प्रतिनिधि थे। अब ये उन दिनों में प्रथा थी कि जब आप मेमने की बलि देते थे वे उसका वध करते थे और होम बलि के रूप में चर्बी को जलाते थे। ये जो धुआं और सुगंध ऊपर उठते थे ऐसा माना जाता था कि धुआं और सुगंध परमेश्वर के पास पहुंचता है। बचे हुए मांस को वे पकाकर खाते थे और ऐसे मानते थे कि परमेश्वर उनके साथ है, उस भोजन में सहभागी है। अब याजक क्या करते थे कि वे अपने त्रिशूल लेकर वहां आते थे और उस मांस में से कुछ भाग निकाल लेते थे कि वो उनका वेतन है। लेकिन एली के पुत्र उनके पास तब आते थे जब वे मांस को काट रहे होते थे। वे कहते थे, हमें पका हुआ मांस नहीं चाहिए, हम खुद इसे पका लेंगे, हमें अपना हिस्सा अभी चाहिए। लोग कहते, निश्चय चर्बी ले लो और परमेश्वर को अर्पित कर दो। वे कहते, हे हमारा समय मत खराब करो, तुम इसे हमें नहीं देना चाहते, हम इसे छीन लेंगे। अतः वे लोगों को धमकाते थे। इसका असर ये हुआ कि लोगों को परमेश्वर का बलिदान चढ़ाना चुभने लगा। अध्याय 2:17 में, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। सचमुच ये कितना भयानक पाप है जब आप अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को परमेश्वर से दूर करते हैं। अपने लालच के कारण आप लोगों को निंदा करने का कारण बनते हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि किसने इन प्रचारकों की डाक सूची में मेरा नाम डाल दिया। ये प्रचारक एक दूसरे को अपनी सूची बेचते हैं। अतः आपका नाम एक सूची में आ जाए तो आप सबकी सूचियों में होंगे, क्योंकि वे अपनी सूची एक दूसरे को बेचेंगे, वे पैसों के लिए कुछ भी करेंगे। अतः ऐसे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पत्र प्राप्त करता हूं जिनमें लिखा होता है, प्रिय भाई, एक मित्र ने मुझे आपके बारे में बताया और मैंने परमेश्वर की अगुवाई पाई कि आपको लिखूं और अपनी जरूरतों को आपके साथ बांटूं। अब मैं बाइबल का एक पन्ना संलग्न कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। अगर आप अपने निवेदन इस पेज पर लिखकर लपेटकर अपना दान भी इस पेज के साथ संलग्न करें और मुझे वापस भेज दें, मैं आपका निवेदन परमेश्वर के सामने लेकर जाऊंगा और आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया है कि आपके साथ कुछ समस्या है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, कुछ ऐसा है जो सही नहीं है। भाई, ये क्या है, मेरे साथ उसे बांटिए। कुछ दिन बाद एक टेलीग्राम आया, आवश्यक, कृपया $10 तुरंत भेजिए, मैं सब कुछ बाद में आपको समझाऊंगा। मैंने क्रूस बनाया है, मुझे उन 4 लोगों के नाम भेजिए जिन्हें आप इस क्रूस पर लिखवाना चाहते हैं, और $15 या $20 का दान साथ में संलग्न करें। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, ये झूठ है। अब ये लोग जिनके पाप सच में भयानक है, ये बहुत डरावना है, क्योंकि ये लोगों को परमेश्वर की निंदा करने का कारण बनते हैं। वे धोखेबाज हैं, ये ज्यादातर कमजोरों को शिकार बनाते हैं जो सेवानिवृत्ति पेंशन पर जीते हैं। वे कुछ नहीं परंतु लूटने वाले कलाकार हैं। उनके पाप एली के पुत्रों के पापों की तरह है, जो लोगों द्वारा परमेश्वर की आराधना और बलि का तिरस्कार करने का कारण बने थे। अब शमूएल ने मंदिर में छोटा छोटा काम आरंभ कर दिया था और उसकी मां ने याजकों के समान उसके लिए एक छोटा सनी का एपोद बनवाया था। जबकि वो छोटा सा अप्रशिक्षित बालक था, उसने याजकों के समान वो एपोद पहना और वहां चारों ओर छोटे छोटे काम करने लगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वो एक छोटा सुंदर बच्चा वहां अपने छोटी सनी के एपोद में इधर उधर घूमता हुआ कैसा आकर्षक दिखता होगा। वो एक सुंदर दृश्य रहा होगा। अध्याय 2 पद 19 से लेकर पद 22 तक। और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी तब बागे को उसके पास लाया करती थी। और एली ने एलकाना शमूएल का पिता और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहां चले गए और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वो गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया और एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इसराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। वे दुष्ट थे जबकि उनको चाहिए था कि वे याजक की तरह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें, फिर भी वे अनैतिक थे, वे बेईमान थे, वे वास्तव में धूर्त थे। अध्याय 2 पद 23 से लेकर पद 25 तक। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं तो इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूं। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वो अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। दूसरे शब्दों में वे इतना आगे निकल गए थे कि परमेश्वर उन्हें मिटा देना चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने पिता की बात नहीं सुनी। अध्याय 2 पद 26 से लेकर पद 28 तक में। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्यों दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है, जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन की घराने के वश में था तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट न हुआ था? और क्या मैंने उसे इसराइल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इसराइलियों के कुल हव्य न दिए थे? परंतु क्योंकि एली और उसके पुत्रों ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया, परमेश्वर ने कहा, दूसरा अध्याय पद 30 से लेकर पद 32 तक, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। सुन, वे दिन आ रहे हैं कि मैं तेरा भुजबल और तेरा मूल पुरुष के घराने का भुजबल ऐसा तोड़ डालूंगा कि तेरे घराने में कोई बूढ़ा होने न पाएगा। इसराइल का कितना ही कल्याण क्यों न हो तो भी तुझे मेरे धाम का दुख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई भी बूढ़ा न होने पाएगा। और अब एक भविष्यवाणी, दूसरा अध्याय पद 35 में, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार सेवा किया करेगा और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा और वो मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। अतः ये भविष्यवाणी नए याजक के लिए है, यीशु मसीह क्रम में मलकीसदेक के बाद याजकों का याजक है।